નિયમસાર કારણ કાર્ય નિયમ લેક્ચર નંબર 166 ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ શુદ્ધાત્મને નમઃ નમો અરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયરિયાણં નમો વજ્રાયાણં નમો લોયે સૌવસાહૂણં નમિ ઊણજિનં વીરં અનંતવર્ણાનદં સણસહાવમ વોચ્છામિ નિયમસારમ કેવલી સુદ કેવલી વણિદમ. આચાર્ય શ્રી કુનકુન ભગવાન દ્વારા રચિત યહ નિયમસાર નામક ગ્રંથ હૈ ઉસ પર પદ્મ પ્રભ મલધારી દેવને તાત્પર્ય વૃત્તિ ટીકા લિખી હૈ. ઇન પર ગુરુદેવ શ્રી કાંજી સ્વામી કે જો પ્રવચન હુએ હૈ વો કારણ કાર્ય નિયમ પુસ્તક રૂપ સે પ્રસિદ્ધ હુએ હૈ. અભી યે તીસરી પુસ્તક હૈ ઉસમે હમ પૃષ્ઠ સંખ્યા 103 પર આ ગયે 103 દૂસરા પેરેગ્રાફ યહાં સે પઢેંગે. જેને સમય દર્શન આત્મ અનુભવ નથી અને રાગનો કરતા થાય છે. સમય દર્શન નહીં એની મિથ્યા દૃષ્ટિ અજ્ઞાની હૈ વો તો રાગ કા કરતા હૈ હી હૈ ને. એને વ્યવહાર ક્યાંથી આવ્યો એને ઉસકી જો ક્રિયાએ હૈ જો કુછ શુભ રાગ હૈ ઉસકો વ્યવહાર નામ નહીં દેતે. નિશ્ચયનું ભાન નથી ત્યાં તો વ્યવહાર જ નથી. ઓર લોગ કહેતે વ્યવહાર કરતે કરતે નિશ્ચય હો જાયેગા.
નહીં નહીં લોગ કહેતે કે આપ સિર્ફ નિશ્ચય કી બાત કરતે હો વ્યવહાર કી બાત હી નહીં કરતે હૈ. તો યહાં કહેતે વ્યવહાર ઉસી કો હોતા હૈ જિસકા નિશ્ચય હોતા હૈ. અબ યહાં તો કિતની ક્લિયર કટ બાત બતાઈ ના કે વ્યવહાર ક્યાંથી હોય. નિયમનું ભાન નથી નિશ્ચયનું ભાન નથી ત્યાં તો વ્યવહાર જ નથી. તો વ્યવહાર કી બાત ક્યાં બતાએંગે યાને વ્યવહાર કિસકો કહેના યે સમજને મેં થોડી સી હમારી દિક્કત હોતી હૈ તો ફિર ખોટા આરોપ હોતા હૈ. યાને બાત એસી હૈ જિસકે સમ્યક દર્શન હુઆ હૈ તો ભૂમિકા અનુસાર ઉસકો રાગ આયેગા ઓર વો જો રાગ આયેગા ઉસકો વ્યવહાર કહેતા હૈ. લેકિન હમ તો પહેલે રાગ કા કરતા બનકર ઉસકો કરને કી કોશિશ કરતે હૈ ઓર વહાં હમ ઉસકા ઓર ના ઓર કુછ લે લે જિસકો હમ કહેંગે કે ઉસકા એક અન્ય કુછ માન્યતા કરકે રખતે હૈ. ચલો
દેખો ક્યા કહેતે તો નિશ્ચયનું ભાન નથી ત્યાં તો વ્યવહાર જ નથી. એને તો સરાગ સંયમી પણ નથી કહેતા. સરાગ સંયમી કિસી કો કિસકો કહેતે હૈ હા જિસકો નિશ્ચય હૈ ઉસકે જો રાગ ભાવ હૈ ઉસ પર આરોપ આતા હૈ વો સરાગ સંયમી. ઓર જો મિથ્યાત્વી હૈ જિસકો આત્મા કા અનુભવ નહીં હૈ ઓર વો મુનિ યોગ્ય મુનિ કે જૈસે બાહ્ય આચરણ હોતે હૈ વૈસે વો પાલ રહા હૈ તો ઉસકો ક્યા કહેંગે એ તો મિથ્યા દૃષ્ટિ અસંયમી છે. એને કેવલ બાહ્ય આચાર પાલના એ સંયમ નહીં કહેલાતા. ઓર લોગ તો ઇસી કો સંયમ કહેતે હૈ વો ત્યાગી તો હૈ ના સંયમી તો હૈ ના એસી દલીલ ભી કરતે હૈ તો ઉનકો ક્યા કહા મિથ્યા દૃષ્ટિ અસંયમી છે. પેજ નંબર 103 દૂસરા પેરેગ્રાફ તીસરી લાઈન અહીંયા તો આત્માના આનંદનો અનુભવ છે અને શાંતિ સમાધિ ત્રણ કષાયના અભાવરૂપ પરિણમી છે પણ નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ ઉપયોગમાં જામ્યા નથી તો શુભરાગ આવ્યો એને ન્યૂન સંયમી સરાગ સંયમી શુભ ઉપયોગવાળા સંયમી કહેવાય છે. ઉસકા નામ હમને ક્યાં દેખા તા અપરત સંયમી. ઉસી કી બાત ચાલ રહી ને યહાં પર અપરત સંયમી. ઉસી કે સબ એકાર્થ વાચી શબ્દ ચાલ રહે યહાં પર. એક દેશ સંયમી ભી કહા થા તો કહેતે છે તો એ હૈ ક્યા હૈ યહ વહાં ઉઠને વાલા જો રાગ હૈ है तो है ही, पण आव्या वगर रहे नहीं, क्योंकि अभी एक कषाय संज्वलन बाकी है और शुद्ध उपयोग में नहीं जम टिक पाता है तो क्या होगा, राग आव्या वगर रहे तो नहीं, अशुभ तो उनके है ही नहीं है, तो इस तरह से शुभ राग आएंगे पंचमहाव्रत के समिति के। पहला छठा गुणस्थाने आवे छे, एई आ तो छठा गुणस्थान वाला ने ज व्यवहार कयो, ओला कहे छे ने व्यवहार पहलो ने निश्चय पछी, भाई आवे छे ने एनो अर्थ आ छठा गुणस्थान वाला ने शुभ उपयोग आयो छे ए व्यवहार छे, पछी अभाव करीने साथ में जशे, मिथ्या दृष्टि ने पहला व्यवहार ने पछी संकित था ए वात छे ज क्या, एवा संयमी मुनि ए समिति नो प्रकार कहो, एने व्यवहार समिति लेवा मुकवानो विकल्प आवो होय ए वात करी, उपेक्षा संयमी हवे कहेशे। आदान निक्षेपण समिति, उसकी बात चल रही है, नया प्रवचन शुरू हो रहा है। मुनि ने वस्तु लेवा मुकवानी विधि नी रीत एनी टीका, आ अपरत संयमियों ने उसी को सराग संयमी कहा, व्यवहार संयमी कहा, एटले ओछा संयम वाला, देखो हर बार ये नया नया शब्द लेते, न्यून संयमी कहा था ना, ओछा संयम वाला, एम अपवाद व्यवहार ने एक देश परित्याग सराग चारित्र कहो के शुभ उपयोग में आयो एम कहो। उपकरणों लेती मुक्ति वक्ते, पण संयम ज्ञानादिकना उपकरणों लेती मुक्ति वक्ते एम, संयम अने ज्ञान तो छे पण ओछू छे, सातमा गुणस्थाने जेवू जोईए ए छठे नथी, इसलिए दो गुणस्थान अलग बताए ना, उसमें कोई डिफरेंस तो है जरूर, एथी एने समितिनो प्रकार कहो छे। विकल्प जेने छे अने अंतर दर्शन ज्ञान चारित्र पण छे एने आ आदान निक्षेपण समिति कहवामां आवी छे, है ना, उनके शुभराग है परंतु वहां अंदर शुद्ध परिणति है, उसके साथ वाला है तो उसको व्यवहार नाम देंगे, उसको समिति कहेंगे। उपेक्षा संयमियों ने पहले कौन सी बात की थी, अपरत संयमियों ने, वो शुभ उपयोग वाला, उपेक्षा संयमी ने शुद्ध उपयोग वाले, उपेक्षा संयमियों ने जेने अंदर मां शुद्ध उपयोग थयो छे, लिखा ना उत्सर्ग छे, देखो उपेक्षा के अगेंस्ट अपरत कहते हैं, और जहां उत्सर्ग मार्ग कहेंगे वहां अपवाद मार्ग कहेंगे, उत्सर्ग और अपवाद ऐसे दो परस्पर विरोधी शब्द है, और यहां पर उपेक्षा और अपरत ऐसे दो शब्द आते हैं। निश्चय नय, इसी को निश्चय नय कहा, सर्व परित्याग छे, और वहां क्या देखा था, एक देश परित्याग कहा था, एक देश परित्याग यानी वो वाला नहीं लेना, पांचवे वाला उसको नहीं लेना वहां पर। उपेक्षा संयमी, उपेक्षा संयम, वितराग चारित्र अने शुद्ध उपयोग ए बधा एकार्थ छे, पुस्तक कमंडल वगैरह होता नथी, ए तो आत्माना ध्यान मां होय छे। ऐसा नहीं समझना फिर कमंडल छोड़ देते होगे, ऐसा ऐसा नहीं, वो लेने रखने का भाव नहीं, वहां तो शुद्ध उपयोग में है, ए तो आत्माना ध्यान मां होय छे। सातमा गुणस्थाने अप्रमत्त दशा छे, शुद्ध आनंदना अनुभव मां होय छे, एने आ पुस्तक कमंडल होता नथी। 104 पेज नया पेरेग्राफ अभी, ते परम जिन मुनिओ ने एकांते एटले सर्वथा निस्पृह होय छे, तेथी ज तेओ बाह्य उपकरण रहित होय छे, अंतरना ध्यान मां होय एने बाह्य उपकरण होता नथी। तो उनके अंतर यानी अभ्यंतर उपकरण होगा कौन सा, जिसके द्वारा शुद्ध उपयोग चल रहा है, तो कहेंगे ज्ञान, उनका अंतरंग अभ्यंतर उपकरण है। देखो इन्हें बाह्य उपकरण होता नहीं, अभ्यंतर उपकरण भूत इन्हें होय केटलू, ध्यान मां मुनि छठे गुणस्थान थी आगळ जई सातमा गुणस्थाने ध्यान मां आवे छे, त्यारे इन्हें अभ्यंतर उपकरण भूत, उपकरण ने वो साधन भूत है ना, उसके निज परम तत्व ने प्रकाशवामा चतुर એવું જે નિરુપાધિ સ્વરૂપ, નિરુપાધિ ઉપાધિ રહિત, જિસકો હમ સહજ કહેંગે, નિરુપાધિ સ્વરૂપ, આગે લિખાય સહજ જ્ઞાન, તેના સિવાય બીજું કાંઈ તેમને ઉપાદેય નથી. એ સહજ જ્ઞાન જો હૈ વહી અભ્યંતર ઉપકરણ હૈ ઓર વહી ઉપાદેય હૈ. ક્યા કહા લ્યો, નિજ પરમ તત્વ આનંદ સ્વરૂપ એને પ્રકાશવામાં ચતુર, એવું જે નિરુપાધિ સ્વરૂપ સહજ જ્ઞાન એનું ઉપકરણ છે. અંતર જ્ઞાન જે સ્વરૂપને પકડીને અનુભવે છે. ક્યા કહા, જ્ઞાન અંદર સન્મુખ, અંતર સન્મુખ, અંતર્મુખિયા, તો ઉસ જ્ઞાન મેં હા સ્વભાવ કા જ્ઞાન આ ગયા તો ઉસકો ક્યા કહેતે હૈ, અંતર જ્ઞાન જે સ્વરૂપને પકડીને અનુભવે છે. સ્વરૂપને પકડીને અનુભવે છે ને, સ્વરૂપ તો સ્વરૂપ કે સન્મુખ હોકર ઉસકા જ્ઞાન ઉસમે આ જાતા હૈ પર્યાય, એ જ્ઞાન એનું ઉપકરણ છે એમ કહે છે. અભ્યંતર ઉપકરણ કેમ કે જ્ઞાનની પર્યાય દ્વારા આખો આત્મા અનુભવમાં લીધો. આત્મા અનુભવની અંદર આત્મા કે સન્મુખ હોકર જાના તો ઉસને આત્મા કો અનુભવ મેં લિયા, એસા કહેને કહેંગે યહાં પર. એથી એને જ્ઞાનને ઉપકરણ કહેવામાં આવે છે. ઉપેક્ષા સંયમી વિતરાગી શુદ્ધોપયોગમાં છે તેને બીજું કાંઈ તેમને ઉપાદેય નથી. લો, જબ છઠે મેં આતે હૈ તો સંયમ ઓર જ્ઞાન કે ઉપકરણ જો બાહ્ય બતાએ હૈ, કોણ સે બતાએ હૈ, પુસ્તક કમંડલ વગેરે, ઓર જબ શુદ્ધોપયોગ મેં હૈ તો અભ્યંતર ઉપકરણ ક્યા હૈ ઉનકે લિયે, વો જ્ઞાન હૈ, સહજ જ્ઞાન જિસકો કહા. 104 પૃષ્ઠ દૂસરા પેરેગ્રાફ. અપરત સંયમ ધરોને પણ જે છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં જેને શુભરાગનો વિકલ્પ ઉઠ્યો છે એ વ્યવહાર નયમાં આવ્યો છે, એને પરમાગમના અર્થનું ફરી ફરીને પરમ આગમ સિદ્ધાંત સર્વજ્ઞે કહેલા ફરી ફરીને પ્રત્યભિજ્ઞાન થવામાં કારણભૂત એવું પુસ્તક. પ્રત્યભિજ્ઞાન એટલે હતું તેને આ છે એમ નક્કી થવામાં વિશેષ પુસ્તક નિમિત્ત છે એમ કહે છે. એ જે જ્ઞાન જો થાય ઉસકી ફિર ઓર ફિર દુબારા ઉસકો હમ કહીએ ને રિવિઝન હોતી હૈ, બાર બાર ઉસકા સ્મરણ કરતે હૈ, ઉસમે પુસ્તક નિમિત્ત હૈ. મુનિને વ્યવહારમાં એ જ્ઞાનનું ઉપકરણ છે. શૌચનું ઉપકરણ, હા દેખો પ્રત્યભિજ્ઞાન જો હમને કલ બાત કી થી ને, પ્રત્યભિજ્ઞાન કિસકો કહેતે હૈ, જોડરૂપ જ્ઞાન. એ મતિ જ્ઞાન કા ભેદ હૈ. મતિ જ્ઞાન વો ઇન્દ્રિયો કે દ્વારા જો જ્ઞાન હો રહા હૈ વો ભી મતિ જ્ઞાન હૈ, જો પહેલે જાને હુએ કો સ્મરણ મેં લેતે જિસકો હમ સ્મૃતિ કહેતે હૈ વો ભી મતિ જ્ઞાન કા ભેદ હૈ. ઓર એક પ્રત્યભિજ્ઞાન, પ્રત્યભિજ્ઞાન એને સામને વાલે પદાર્થ કા જ્ઞાન ઓર પહેલે વાલે વો સ્મૃતિ મેં જો લિયા હૈ વો ઉનકા જોડરૂપ જ્ઞાન, વો ભી મતિ જ્ઞાન હૈ, ઉસકો કહેંગે પ્રત્યભિજ્ઞાન. એક પહેલે હમને કોણ સા દેખા હતા, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન જિસકો સામ વ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ કહેતે હૈ. દૂસરા યે વો પ્રત્યક્ષ હૈ, સામવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ હૈ તો પરોક્ષ. દૂસરા યે સ્મૃતિ, ફિર પ્રત્યભિજ્ઞાન, તર્ક, અનુમાન, યે સબ ક્યા હૈ, મતિ જ્ઞાન કે ભેદ હૈ. તો યે પ્રત્યભિજ્ઞાન એને જો જાને હુએ હૈ ઉસી કો ફિર દુબારા પુસ્તક મેં પઢને સે ફિર વો બાત સ્મરણ મેં આતી હૈ જો હમને પહેલે ભી સમજી હૈ. મુનિયોને તો જાના હૈ વો વિશેષ વિશેષ, ક્યુંકી અભી વિશેષતા ની સાત તત્વો કે બારે મેં તો કુછ હૈ સે કન્ફ્યુઝન તો હૈ હી નહીં હૈ. કરણા યોગ કે વિષય હૈ, ત્રિલોક કી રચના હૈ, ઇસ કે બારે મેં સૂક્ષ્મ જો કોઈ પોઈન્ટ્સ હોતે હૈ તો વો હમ ભી બાર બાર ક્યું અભ્યાસ કરતે હૈ. મુનિયો કી તો વિશેષ યોગ્યતા હૈ, ઉન્હોને તો કિતના અભ્યાસ કિયા હુઆ હૈ. તો ઉસકે કારણ વો પ્રત્યભિજ્ઞાની ને પહેલે જાને હુએ કા ફિર દુબારા ઉસકે સાથ મિલાન ભી હોતા હૈ, સ્મરણ ભી હોતા હૈ, ઉસકે દૃઢતા ભી હોતી હૈ.
देखो लौकिक में हम जैसा कहते हैं कि एक साड़ी देखती है किसी की और ऐसे ही साड़ी में साड़ी मेरे पास है लेकिन कलर में डिफरेंस है या वैसी है तो वो प्रत्यभिज्ञान हो गया. किसी की बॉल पेन देखी हमने और हमने सोचा ऐसा ही बॉल पेन मैंने बाजू वाले के पास देखा था तो अभी जो देख रहे वस्तु और पूर्व में देखी हुई वस्तु इसकी तुलना होती है, मतलब उसका जोड़ रूप ज्ञान होता है, उसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। आप यहाँ समझा रहे हैं मुनिराज अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, और जब पुस्तक में आत्मा के बारे में कुछ बात आती है तो उनको याद आता है कि अरे मैंने ऐसे ही आत्मा का अनुभव किया था, वो जोड़ रूप ज्ञान है, उसे प्रत्यभिज्ञान कहेंगे।
कैसी है मति ज्ञान पूर्वक देखा हुआ ऐसा उसकी डेफिनेशन नहीं है। आप बताओ किसको ज्ञान है, याद है? नहीं नहीं नहीं, शुद्ध ज्ञान तो एक इंद्रियों के भी होता है मति शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान की डेफिनेशन क्या है, कौन बताना चाहता है? हाँ बोलो। नहीं नहीं, देखो मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के द्वारा, उसके अवलंब से उसके द्वारा अन्य पदार्थ को जानना। कैसे? आपने शक्कर ये क्या, कौन से इंद्रिय के द्वारा सुना? कर्णेन्द्रिय के द्वारा शब्द को सुना, ध्वनि को सुना। वो ध्वनि को सुना और शक्कर नाम का पदार्थ जो हमने हमारे घर में बैठ रखा है सफेद सफेद, वो हमारे ख्याल में आ गया। आपने तो ध्वनि सुनी या वहां लिखा हुआ देखा, वो लिखा हुआ तो अक्षर है, वो पेन से अक्षर लिखा है, उसमें शक्कर नहीं है, पर शक्कर ऐसा पढ़ने से वो शक्कर पदार्थ हमको ख्याल में आया,
शक्कर पदार्थ ज्ञान
हुआ, उसका ज्ञान हुआ, वो श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से किसी अन्य पदार्थ को जानना, वो है श्रुत ज्ञान। अन्य पदार्थ को जानना है। ऐसा नहीं, उसी के समान हमने पूर्व में भी जाना था, पूर्व के जानने के साथ वर्तमान जानने को जोड़ रहा है, वो मति ज्ञान का भेद है। यानी उसमें सामने का इंद्रिय ज्ञान तो है ही है और पुराना स्मृति ज्ञान भी उसके साथ है। स्मृति में केवल स्मृति है, प्रत्यभिज्ञान में वर्तमान वो ज्ञान के साथ स्मृति को उसके जो मिलान कर दिया उसने, वो है प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान ये श्रुत ज्ञान से बहुत डिफरेंट है। हाँ नहीं, उसकी परिभाषा जो है श्रुत ज्ञान की, मति ज्ञान तो हमें इंद्रियों के द्वारा मति ज्ञान हुआ, और श्रुत ज्ञान अन्य जैसे भी वनस्पतियों को भी होता है कि नहीं मति श्रुत, श्रुते ने केवल सुना हुआ ऐसा नहीं लेना है, सभी इंद्रियों के द्वारा जो होता है मति ज्ञान उस संबंधी श्रुत ज्ञान भी होता है। वो हमने मोक्ष शास्त्र में कितने विस्तार से देखा था, हरेक इंद्रियों के बारे में देखा था, यहाँ अपना यहाँ हुआ था। अब एक इंद्रियों को भी होता है कि नहीं, जैसे यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो ये मुझे कुछ अनुकूल है, इस तरह से वहाँ जो कुछ होता है उसका जानना भी होता है। वो उस दिशा में जानना वो तो बात अलग है, वो तो पुद्गल की जो क्रिया हो रही है, परंतु वो जीव ने कुछ जाना कि नहीं जाना, कि अपने लिए क्या जिसको फेवरेबल है करो, हित रूप है अहित रूप है, इसका भी ज्ञान होता है उसको। ये मति श्रुत ज्ञान तो हर जीव को है, केवल ज्ञानी छोड़कर।
देखो बात ऐसी है कि ये मति ज्ञान या श्रुत ज्ञान, यह ज्ञान के भेद है, ख्याल में है ना? और प्रत्यभी ज्ञान ये मति ज्ञान का भेद है।
मति के ये जिसको भी ना पेटा भेद, मति ज्ञान का वो पेटा भेद।
देखो कल 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 शायद विनोद भाई सावला आए थे, वो कह रहे थे कि हमने तत्वार सूत्र आपसे यहाँ सीखा था, वो सीडीज अभी मैं सुन रहा हूँ और ऐसे लगता है कि आप ही अभी हमको सिखा रहे, तो वो प्रत्यभिज्ञान हुआ।
पहले की बात फिर याद आ जाना, उसके साथ फिर मिलान हो जाता है वो सब। अब आगे बढ़े, प्रत्यभिज्ञान समझ में आए ना? इसको जोड़ रूप ज्ञान ही कहते हैं। पहले से जाना है कोई पदार्थ और वर्तमान में कोई जान रहे हैं, उसके साथ मिलान होता है और वो उसी समय वो हमारा ऐसा ही था या उससे थोड़ा डिफरेंट था, ये सब बातें ज्ञान में आ जाती है। श्रुत ज्ञान यानी मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से किसी अन्य पदार्थ को जानना, क्योंकि मति ज्ञान से तो हम शब्द सुने, और शब्द सुनकर हम कुछ अर्थ भाषित होता है। जैसे यहाँ हमने पढ़ा यहाँ पर आत्मा यद ज्ञान, तो यहाँ ज्ञान होते हुए हमें भाषित होता है, वो ज्ञान जो है और वो जो शब्द है वो जुदा है। वो ज्ञान नाम का शब्द है, उसको हमने आंखों से देखा ज्ञान, और हमने अरे हमारे समझ में आ गया, हमें ज्ञान हुआ। वो जो ज्ञान है वो ज्ञान शब्द के द्वारा वो ज्ञान को पकड़ा। या आत्मा, यहाँ हम ये बात पढ़ी या सुनी और फिर हमने अपनी आत्मा का लक्ष्य किया, तो ये हो गया मति ज्ञान को छोड़कर हमने शुद्ध ज्ञान को उसको पकड़ा। भगवान के द्वारा या मुनियों के द्वारा हमने आत्मा संबंधी उपदेश सुना, वो कहते ये भगवान आत्मा है और उसका तो अनुभव कर, उसके सन्मुख हो। ये तो शब्द सुने और हमने उस पदार्थ का लक्ष्य किया, तो ये मति ज्ञान से हमने वो शुद्ध ज्ञान को पकड़ा। ये देशना क्या काम करती है? देशना तो इंद्रिय के द्वारा हमने सुनी है, फिर समझी और उसके बाद हमने वो आत्मा नाम के पदार्थ को जो हम स्वयं है उसका लक्ष्य किया। ये मति शुद्ध ज्ञान ऐसा होता है। देखो अभी यहाँ पढ़ रहे थे हम 104 पृष्ठ पर, वो दूसरा पैराग्राफ, उसमें तीसरी लाइन थी ना, फरी फरी ने प्रत्यभिज्ञान थवामा कारणभूत एवं पुस्तक। क्योंकि पुस्तक पढ़ते हैं तो बारंबार हमने पढ़े हुए विषय भी फिर दोबारा स्मरण में भी आते हैं। प्रत्यभिज्ञान इतले हतु तेने आच्छे एम नक्की थवामा, क्या कहा? ज्ञान तो हतु, तो यही है, ऐसा ही है, ये नक्की फिर दोबारा हुआ, दृढ़ होगा, तो उसमें विशेष पुस्तक निमित्त छे एम कहे छे। मुनि ने व्यवहार में ये ज्ञान नु उपकरण छे। शौच नु, शौच ने शुद्धता, शुद्धि जिसको कहें, उपकरण काय विशुद्धि ना हेतुभूत कमंडल होय छे। जंगल आदि साफ थवा माटे काय विशुद्धि ना निमित्त कमंडल पानी नु होय छे। ये पानी उनके जो मलमूत्र विसर्जन के बाद वो पानी का यूज होता है। ऐसे बहुत ठंड लगी इसलिए वो नहाने के लिए यूज के, नहाते तो है नहीं, स्नान व्रत है उनके।
यानी उनके पास पानी होते हुए भी जब जी चाहे जब पानी पी ले वे, ऐसा होता नहीं, वो तो शौच के लिए पवित्रता के लिए ही होता है। तो बताए जंगल आदि साफ थवा माटे,
मुनि ने पात्रा बात्रा होता नहीं, भारे आकरो काम। पात्र ने पात्र, नहीं वो समझ में, पर उसको पात्र कहते हैं, बर्तन यानी पात्र ने वासन वा, कोई हम हाँ ऐसा पात्र, पानी के लिए अलग होता है। देखो मुमुक्षु ने कुछ कहा है, उसके उत्तर में कहते आदान, अहीं आदान निक्षेपण,
ऊपर एक हांडी जैसा होता है, नीचे तप, पांच छह तपे लगे, ऐसा एक पूरा थर्मस टिफिन जैसा, तीन चार होते भाई, पांच छह सात थोड़ी होते, तीन चार होंगे। अगर आचार्य का सात आठ दस जन संघ का लेके जाने का है तो बड़े आदमी एक ही महाराज साहब निकले हैं तो उसके पास ज्यादा रहते हैं, आप क्या आते ही नहीं ना, वो दाढ़ी देख के भाग जाते हैं।
देखो आगे बढ़ेंगे
तो घूमते ना, हम तीन चार वाला देखा, सात वाला आठ वाला,
अभी आगे बढ़ेंगे। आदान, अहीं आदान निक्षेपण, वचमा उला शब्दो नाख्या छे ने, समिति छे ने, खबर छे ने, खोटी छे। अहीं तो आदान निक्षेपण बस, कोनु के ज्ञान ना उपकरण रूपी पुस्तक नु अने कमंडल नु अने संयम नु उपकरण हेतु पिंची छे, आवो मार्ग छे। कोई वळी एम कहे छे ए तो दिगंबर ना शास्त्रो मा ए छे, अमारा शास्त्र में तो अनादिनो आ छे एम कहे। तो उनकी शास्त्रीय शादी है तो अनादि से कहाँ आया, अनादि से तो था ही नहीं मान रहे, पीछे ने मोर पंख का बनाते हैं ना, मोर पंखों को इकट्ठा करके वो ऐसा, आपने देखा कि नहीं कभी?
नहीं
कहा। ये आता है ना, ये मुनियों का चित्र आता है एक बार, जो वो पीछे दिखाते हैं ना, देखो उसमें लेफ्ट राइट साइड में कहीं लिखा होगा ना, बाजू में होगा उधर। हाँ, वो पीछे होता है। देखो यहाँ, ये बहुत इतना ऐसी छोटी सी दिखा, मैं ऐसे काफी बड़ी होती है, मेरे ऐसी तो होती है इतनी बड़ी। उससे क्या है अभी, नहीं वो बहुत छोटी इतनी सी
बता रहा
हूँ। हाँ देखो, અહીં તો આદાન નિક્ષેપણ બસ કોનો કે જ્ઞાનના ઉપકરણ રૂપી પુસ્તકનું અને કમંડળનું અને સંયમનું ઉપકરણ હેતુ પીંછી છે, આવો માર્ગ છે। કોઈ વળી એમ કહે છે એ તો દિગંબરના શાસ્ત્રોમાં છે, અમારા શાસ્ત્રમાં તો અનાદિનું આ છે એમ કહે। મુમુક્ષુ પૂછતે આ બેમાંથી સાચા કયા એ નક્કી કરવું પડે ને, બે જ્યારે પરસ્પર વિરુદ્ધ કહેનારા હોય તો સત્યના શોધકે નક્કી કરવું જોઈએ, यही सत्य है। ये बिल्कुल, ये दिगंबर ऐसा कहते हैं, श्वेतांबर ऐसा कहते हैं, ऐसा चलेगा नहीं। कौन क्या कह रहे तो कह ही रहे, उसमें अपने को क्या है, तो हमें निर्णय चाहिए उसमें से सत्य मार्ग कौन सा है। बहुत सारे ऐसे होते ना, वो ऐसा कहते वो ऐसा कहते, दोनों का समाधान करते चलता है ना। वहां अमेरिका में ऐसे आते वहां स्कॉलर, क्या कहते हैं, बिल्कुल नक्की की। देखो सत्य जो है यही सत्य है, अन्य नहीं। इस प्रकार से जब तक निशंकित नहीं होते तब तक वो समय दर्शन होने का चांस नहीं है। देखो हम कौन से पंथ में किस माँ बाप के यहाँ जन्मे है उससे कुछ लेना देना नहीं। हमें मोक्ष प्राप्ति करनी है तो सच्चा मार्ग कौन सा है ये नक्की करना पड़ेगा, भले वो हिंदू में जन्म लिया हो या मुसलमान या तीर्थ में हो या जहाँ कहाँ हो। जिसको मार्ग, मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, धर्म की शुरुआत करनी है, उसको ये नक्की करना ही पड़ेगा। फिर हमारा समाज तो ऐसा कहता है, हमारे माँ बाप ऐसे करते, हमारे घर वाले ऐसा करते, वो कुछ नहीं उसमें काम आएगा। अभी उसमें से कुछ मार्ग निकाला ऐसा अभी क्या करें, अभी जिसको जो रचना ही ऐसी खोटी करनी है तो कुछ ना कुछ उसमें बहाने बना लेते हैं।
देखो सुनो सुनो सुनो, दिगंबर कौन होता है और सच्चा दिगंबर कौन है, कि जो अंतरंग में कषाय उनसे रहित हो गया है, वो केवल बाह्य में नग्नता धारण करे, उसको दिगंबर नहीं कहेंगे, ख्याल में है ना। तो वैसे उनका होता हो तो अच्छी बात है, लेकिन होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप ही उनको मालूम नहीं है, और मालूम होते हुए भी उसका वो विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए तो अलग पंथ किया ना, नहीं तो अलग पंथ होने का कारण क्या है।
अगर वो कहते एकल विहारी वो दिगंबर होते हैं, ऐसा अगर उनका कहना है, हाँ पर वो जो दिगंबर हुए हैं वो तो संघ में साधु कपड़े पहनते ऐसा तो मान रहे हैं ना जी। जो एकल विहारी दिगंबर घूम रहे हैं, उन्होंने कोई जीव ऐसे साधु होकर संघ में कपड़े पहन सकते ऐसा माना कि नहीं माना, यानी उन्होंने साधु का स्वरूप ही माना नहीं। वो स्वयं तो दिगंबर है परंतु कुछ तो साधु ऐसे हो सकते हैं, ऐसा उनका मानने है कि नहीं, क्योंकि वो उसी पंथ के जो है और देव के बारे में भी क्या मान रहे हैं। ये सारी मान्यता ही झूठी है, ये कहते हैं जहाँ मान्यता ही झूठी है वहां अभी आत्मा का अनुभव ही नहीं है, तो आगे की बात ही नहीं है। देखो आ तो मार्ग जनादिनो आ छे, वचमा निकल्या एटले पछी आखो फेरफार करी नाख्यो, समझ में आई बात। ये जो सब बाद में फेरफार करके शास्त्रों की रचना ऐसे झूठी रचना हो गई है, ऐसे संघ को बुला बुला के उनके अलग अलग शास्त्रों की रचना करने के आदेश दिए गए थे, तब ये सब रचना हुई है, बाद में हो गए, बहुत बाद में हो गए। यानी वो तो श्वेतांबर पंथ पहले निकला और उसके कितने ही साल बाद ये सब शास्त्रों की रचना की गई। उसके वो और बाद में हुए, फिर उसमें से वो भिक्षुक नाम का कुछ वो तुलसी वाला वो अलग निकाला, भिक्षुक नाम के एक उनके मुनि हुए थे कोई, उन्होंने वो स्थानक वासी में से तारण पंथ उनका एक अलग निकाला। तेरा पंथ वो तारण पंथ नहीं, तेरा पंथ, हाँ वो तुलसी वाले, अभी वो तुलसी वाले हैं, वो पन निकालने वाले वो भिक्षुक नाम के थे,
मेरे पास जो
तुलसी वाले तेरा तेरा पंथी बरोबर है, तारण पंथी नहीं, तुलसी तेरा पंथी कहते हैं। तारण पंथी जो ये है, तारण स्वामी के बाद हुए हैं, वो तो दिगंबर है, वो भी मूर्ति विराजमान नहीं करते, शास्त्र विराजमान करते हैं वेदी में, क्योंकि वो मोहम्मदन आए थे तभी वो सब मूर्तियों के भंग करते हैं मूर्तियों को, इसलिए क्या किया उन्होंने मूर्तियां निकाल निकाल कर जमीन के अंदर गाड़ दी थी और ऊपर शास्त्र विराजमान करते थे, फिर वो वैसी पद्धति बनी आगे चलकर। पर उनके तो जिनको फॉलो करते वो तो तारण स्वामी जो हुए थे वो नग्न दिगंबर भावलिंगी संत थे, उनकी शास्त्र की रचना अद्भुत है एकदम। नीचे के दो लाइन 104 पेज पर, आ तो मार्ग जनादिनो आचे, यानी दिगंबर मार्ग वचमा निकल्या एटले पछी आखो फेरफार करी नाख्यो, पण हवे वात तो मध्यस्थी जेने विचारना होय सत्यने शोधवू होय तो आ वात छे। उन्होंने भी वो सब पहले पढ़े थे, फिर सत्य की जब खोज करते करते वो दिगंबर ग्रंथ हाथ में आए तो सच्चा मार्ग उनको भी समझ में आया। कांजी स्वामी को मुनि ने तो एक पुस्तक होय छे, कमंडल होय छे अने पीची बस, आ उपकरणों ने लेती मुक्ति वक्ते लो, ये मुनिपनानी श्रद्धाना पण ठिकाना नथी, कोने मुनि कहवा, आहा हा, तो उपकरणों ने लेती मुक्ति वक्ते उद्भवती प्रयत्न परिणाम रूप विशुद्धि, यानी शुभ भाव, सावधानी का परिणाम है ना वहां पर, वो शुभ भाव रूप है, जो शुभ भाव ने ही विशुद्धि की दी, ये शुभ भाव को ही विशुद्धि कहते हैं यहाँ पर, कहीं कहीं वो वितरकता के लिए कहते हैं, पर विशुद्धि शब्द मंद कषाय को सूचित करता है, शुभ भाव को। तेज आदान निक्षेपण समिति छे, समिति नु नाम ज आ छे, आदान निक्षेपण लेवू मुकवू बस एटलू, शू के आ त्रण पुस्तक कमंडल पीछे एम शास्त्र मां कहूं छे, छे ने निर्दिष्टेती छे ने पाठ मां भवती एम निर्दिष्टेती एम भगवाने सिद्धांत मां आ कहूं छे, बताए ने भगवान ने बात बताई, ए थी विरुद्ध ए सिद्धांत नु कथन नथी, कथन नहीं, यानी उससे जो विरुद्ध कथन है वो सिद्धांत का कथन नहीं है, वो भगवान ने बताया हुआ नहीं है, किसी ने अपने राग द्वेष के कारण अज्ञानियों ने वो उसकी रचना की है। कुनकुंदाचार्य कहे छे ने जो ने कोदित्य निदिठा भगवाने आम कहूं छे, अने भगवान ना सिद्धांत मां आटलू छे, एने त्रण उपकरण सिवाय बीजू होतू नथी। अब चश्मे को ज्ञान का उपकरण कहेंगे कि नहीं कहेंगे, लैपटॉप को और वो क्या क्या वो सब किसी को नहीं कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं 87 श्लोक 87। उपकरण नहीं, वो वहीं के वहीं छोड़ देते, वो कैरी नहीं करते, वो तो कलम यानी वो तो खील होती थी लोहे की, इस तरह से वो उकेरते थे, या हो सकता है उनके संग के दूसरे भी लिखते थे, वो तो मुख से बोलते हो गए, बाकी जैसे इतनी पुस्तकें निकली स्वामी जी की, उन्होंने कितना लिखा, जैसे टेप हुआ उसको किया, या लोगों ने नोट्स निकाले, फिर पहले तो टेप भी नहीं था, तब क्या होता था वो नोट्स निकाल कर रोज के रोज साइक्लो स्टाइल रोज के रोज निकलते थे और पूरे देश भर में भेजे जाते थे, कितना कितना उन लोगों ने मेहनत की होगी,
हाँ
प्रवचन सार में उसी को लिया था हमने, साइक्लो स्टाइल के सारे जीरोक्स निकाले थे यहाँ पर। हाँ हाँ देखो अभी ये श्लोक 87 पढ़ेंगे। समितिषु समतीयम् राजते सोत्तमानाम् परमजिन मुनीनाम् संहतौ शांति मैत्री त्वमपि कुरु मनःपं केरुहे भव्य नित्यं भवसि हि परमश्री कामिनी कांत कांत। हवे 64 में गाथानी टीका पूर्ण करता टीकाकार मुनिराज श्लोक कहे छे, श्लोकार्थ बता रहे। उत्तम परम जिन मुनियोनी आ समिति समितियों मा शोभे छे। समितिषु राजते समिति इयम यानी यह समिति समितियों मा शोभती है, उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट तो उत्तम परम जिन मुनियों के लिए उत्तम आ समिति। तेना संगमा शांति अने मैत्री होय छे, अर्थात आ समिति युक्त मुनि ने धीरज सहनशीलता क्षमा अने मैत्री भाव होय छे। हे भव्य तू पण मन कमल मा मन पंके रूहे पंके रूहे पंक रूहे क्या है पंके रूहे मन कमल मा सदा ते समिति धारण कर के जेथी तू परम श्री रूपी कामिनी नो प्रिय कांत थईश, अर्थात मुक्ति लक्ष्मी ने वरीश यानी मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अब ये प्रवचन इसके ऊपर पढ़ते हैं 106 पृष्ठ पर आना। उत्तम परम जिन मुनियों ने आ समिति उत्तम परम जिन मुनियों ने आ समिति हाँ आ समिति समितियों में शोभे छे, बधी समिति में आ समिति शोभे छे एम कहे छे। तेना संग में शांति अने मैत्री होय छे, जेने आवी समिति होय एने धीरज होय सहनशीलता होय छे। धीरज एटले सहनशीलता, क्षमा अने मैत्री भाव होय छे। धीरज एटले सहनशीलता अने क्षमा एम एनु नाम क्षमा। धीरज होय छे उतावळी नथी शांत छे। हो वीतरा कहे छे ए संत मुनिपणू आवू छे, अंतरमां जेने आत्म अनुभव होय छे ए उपरांत एन इन एडिशन संयम अने स्थिरता पण होय छे। अने आवी समितिनो भाव जेने होय एनी साथे क्षमा अने मैत्री भाव होय छे। हे भव्य तू पण मन कमल मा हे भव्य तू पण मन कमल मा सदा ते समिति धारण कर। आवी समिति होय एने धारण कर। अहीं तो मुनि ने वात छे ने, क्योंकि जो मुनि नहीं है अभी अज्ञानी उसको ऐसी समिति धारण करे ऐसा तो कहेंगे नहीं। ख्याल में आई बात। बीजाने समझावे छे के आवु मुनिपणी होय छे मुनिपणू होय छे, तो कहते मुनियों को समझाना तो हमें क्यों समझा रहे हैं, हम पढ़ रहे ना यहाँ, तो मुनिपना कैसा होता है उसको हमको समझना है, हमें नक्की करना है कि यह मुनिपना है, मुनि ऐसे होते हैं। आ सिवाय बीजी रीते मुनिपनु माने तो ये गुरु माँ इनी श्रद्धा माँ भूल छे। क्या कहते हैं गुरु संबंधी श्रद्धा में भूल है, देव संबंधी गुरु संबंधी शास्त्र संबंधी मूढ़ता कहेंगे उसको। श्रद्धा में भूल करते कहे मूढ़ता, उसको गुरु मूढ़ता कहते हैं। जो गुरु नहीं है उनको गुरु मानना यह है गुरु मूढ़ता। यहाँ लिखा ना गुरु माँ इनी श्रद्धा माँ भूल छे, गुरु संबंधी श्रद्धा माँ भूल छे, अने देव माँ पण इनी भूल थई। क्यों भूल हुई, अकेले गुरु में भूल हुई ना। भगवान ने जिस प्रकार मुनि का स्वरूप बताया वैसा इसने नहीं माना तो उसने भगवान को भी गलत माना। ख्याल में आई ना, यही बात बता रहे यहाँ पर। हाँ हाँ यानी देखो भगवान ने जो बताया है उसको मानना तो उसने सही माना। अभी जिस गुरु का स्वरूप वो गुरु मानकर उसको नजर के सामने है, उसको जिसको गुरु मान रहा है और कहते हमारे भगवान ने ऐसा बताया है, तो उसका भगवान भी खोटा हो गया। भगवान के नाम पर गए ना, हमारे भगवान ने गुरु का स्वरूप ऐसा बताया है, ये भगवान की वाणी में आया है, तो इनके गुरु ही खोटे हैं। तो वो जिस भगवान की दुहाई दे रहे कि दलील कर रहे कि ये भगवान की बताई बात है, तो उन्होंने जिसे भगवान माना है वो भी खोटा है, ये इससे सिद्ध कर रहे। फिर से पढ़ते देखो, ये गुरु माँ एनी श्रद्धा माँ भूल छे, अने देव माँ पण एनी भूल थई, देवे आम कहू ने, तो जिस देव ने ऐसा कहा वो देव भी खोटा है। शास्त्र में एम कहू नथी, अने शास्त्र आम कहू एम माँ ने क्या कहा, जो मूल शास्त्र है उसमें तो ऐसा बताया नहीं था, क्योंकि देव ने जो बताया था वो शास्त्र में रचना की थी गणधर ने। अब ये कह रहे ऐसा शास्त्र में लिखा है, तो वो शास्त्र भी खोटे हैं। जिन शास्त्रों में गुरु का स्वरूप गलत बताया है वो शास्त्र भी खोटे हैं, ये कह रहे। मुनि जिसको कहेंगे उसको गुरु कहेंगे, छठे सातवें ही गुरु होते हैं। यहाँ देव गुरु शास्त्र वाले गुरु है ने मुनिराज, और हमारे विद्या गुरु हो सकते हैं जो चौथे पांचवे वाले जो हमें मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, वो कैसे है विद्या गुरु, वो मुनि वाले गुरु नहीं है, देव गुरु शास्त्र वाले गुरु। हाँ, कांजी स्वामी विद्या गुरु है, उन्होंने अध्यात्म शास्त्र हमको पढ़ाए, वो तो गृहस्थ है, उन्हें मिथ्यात्व भी नहीं, ज्ञानी है ना, ज्ञानी की ही देशना काम करेगी। अभी ऐसे कोई उपदेश देने वाला है शास्त्र पढ़ के बताने वाला, वो बात अलग, परंतु वो तो सही नहीं होगा ना, अनुभव पूर्वक जो बात होगी वही सही होगी।
देखो आप जो कह रहे हैं ना मनीषा बहन, कि चौथे पांचवे वर्ण गुणस्थान वर्ती मुनिराज जो है,
मुनिराज नहीं श्रावक,
श्रावक नहीं मुनिराज कह रहे हैं ना आप,
चौथे पांचवे वाले मुनिराज कह रहे
हैं। देखो चौथे गुण स्थान में जीव है वह भी मुनि योग्य बर्तन करता है, लेकिन उनके तीन कषाय के अभाव पूर्वक वो वितरकता नहीं है,
परंतु उपदेश तो सच्चा देंगे।
ऐसा जीव उसमें कितनी वितरकता है वो कैसा आप नक्की करेंगे, आप तो बाह्य उनका स्वरूप देख रहे हैं, अंतरंग में जितनी उनको वितरकता प्राप्त हुई है वो किससे मापेंगे हम, तो उनको तो हम उनके साथ भी मुनि योग्य हमारा वर्तन होना चाहिए ख्याल में, लेकिन वो मुनि तो छठे सातवें गुणस्थान वर्तियों के ही कहेंगे, उनको भी आगम के अभ्यास से उनको भी कहेंगे कि वह भावलिंगी मुनि नहीं है, लेकिन भावलिंगी मुनि नहीं है और जिनका द्रव्य लिंग यथार्थ यानी 28 मूल गुण यथोचित पालते हैं ऐसे जीव को भी नमस्कार करने योग्य है।
उनमें अगर उपदेश में कोई बहुत गलती होती होगी तो फिर दूर जाना, नमस्कार करने की कोई जरूरत तो है ही नहीं, कि नमस्कार नहीं करेंगे तो पाप लगेगा ऐसा तो है नहीं वहाँ पर, तो उन क्या उपदेश दे रहे, वहाँ केवल वो मौन से बैठे तो हम उनके 28 मूल गुण की बात देखेंगे, उपदेश दे रहे तो उपदेश सत्य है कि नहीं, क्या राग का उपदेश दे रहे वो तो पड़ताल कर सकते है कि नहीं, तो कहते ये परीक्षा करने की इतनी शक्ति हमारे में होनी चाहिए, और मुनि को परीक्षा करके स्वीकार करना ये श्रावक का कर्तव्य है। तो संयम प्रकाश ग्रंथ है उसमें तो ऐसा लिखा है, कोई मुनि भूल करते हैं तो उसको सुधारना भी का श्रावक का कर्तव्य है कि उनके साथ बात करके। अभी क्या करें, पता ही नहीं ना क्या मार्ग कैसा होता है।
देखो एक दफे क्या हुआ कि यहाँ माटुंगा में एक दिगंबर मुनिराज आए थे, तो उनको मिलने के लिए बाहर गांव से कोई लोग आए और हमको जबरदस्ती कहे कि अरे देखो हम बाहर गांव से आए मिलने को आए हैं और आप नहीं आते, ये क्या बराबर है, और ये कहने वाला कौन था, तो उज्ज्वला की मम्मी थी, तो अभी मम्मी को सुनना के नहीं, तो जोर जबरदस्ती से हम गए, तो वहाँ माटुंगा में एक जगह वो रुके थे, वहाँ हम पहुँचे तो हमको कहा चलो चलो आप आगे चलो आगे चलो आगे चलो, उनके बिल्कुल ऐसे सामने जैसे आए क्या नाम है ये दोनों बैठे हैं ना, वैसे हम दोनों बैठे इधर और वो मुनिराज काटले पे बैठे थे, खाट क्या बोलते हैं
बैठक होती है ना वो लकड़ी का होता है ना प्लेटफॉर्म लकड़ी का
पाठ पाठ, तो हमको कहा कि पूछो पूछो पूछो, पीछे से जबरदस्ती कर रहे हैं। तो उज्ज्वला ने पूछा कि महाराज हमको सम्यक दर्शन करना है, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या करना। तो पहले तो उत्तर ही नहीं दिया, फिर बाद में और दो तीन बार पूछने के बाद कहते हैं सम्यक दर्शन क्या, महल में भी हो सकता है, झोपड़ी में भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है। अरे किधर हो सकता है वो तो समझ में आया, लेकिन कैसे प्राप्त करना। तो बोलते देखो लौकिक में भी लाखों महिला होती है, उसमें एक डॉक्टर होता है, सभी महिलाएं डॉक्टर नहीं होती। तो उसने कहा मैं डॉक्टर हूं, और वो अभी वो तो ऑब्स्टिकल मैंने पार किया है, तो हमको सम्यक दर्शन कैसा होना ये बताओ। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे संघ में दाखिल हो जाए, फिर आपको हम बताएंगे। तो उसको मुनि माने क्या नहीं माने, दिगंबर है
फिर वो, यानी ये टालने के लिए वे कह रहे हैं। फिर किसी को बोला, वो अपने वो टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टाइजमेंट दी थी, उसका क्या हुआ, ये हुआ क्या हुआ,
हमारा
ऐसी बात करने लगे
बिहार का, उसमें छप के आया कि नहीं, ऐसा हमको छोड़ के ऐसी बात करने लगे।
हमने बोला मिल गया जवाब हम
यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हमें स्वयं में ऐसी ताकत ऐसी योग्यता प्राप्त करे कि सामने वाला
व्यक्ति, उनसे सही जवाब की कोई अपेक्षा थी नहीं, परंतु भी प्रश्न पूछो प्रश्न पूछो प्रश्न पूछो तो पूछ के देख लिया चलो आगे
आज के तारीख में वो
हाँ यहाँ देखो हमने कर इसे त्रणेमय इनी भूल छे मिला मन वचन ने काया मन कमल मां सदा ते समिति धारण कर के जेथी तू परम श्री रूपी कामिनी नो प्रिय परमानंद रूपी दशा अतीन्द्रिय परम आनंद रूपी मुक्त दशा एवी तारी परिणति एनो प्रिय कांत थईश ए परिणति तने एक समय पण छोड़शे नहीं एम कहे छे। अने हर समय वो हाँ अनंत ज्ञान सुख की दशा चलती रहेगी। मुमुक्षु आ उत्सर्ग मार्ग छे, पेलो अपवाद मार्ग। उत्तर ओलो विकल्प है वो ये अपवाद। देखो जो लौकिक में हम कहते ये नियम है और ये नियम के लिए कोई अपवाद होते है, वैसा अपवाद नहीं है वो अपवाद और ये अपवाद उसकी कोई तुलना नहीं करना है। नहीं तो ऐसे नियम के लिए अपवाद भी होते हैं ऐसा कहकर इसका अर्थ मत लगाना। क्या होता है लौकिक में उस शब्द के कोई अर्थ अलग होते हैं और शास्त्र में वही शब्द किसी अन्य अर्थ में आते हैं, हमें वहाँ का अर्थ वहाँ समझना चाहिए क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। देखो यहाँ क्या कहते हैं विकल्प विनानो आ उत्सर्ग, उसको उत्सर्ग कहते हैं। दूसरा नंबर शब्द क्या देखा था हमने उपेक्षा संयम है ना, अने विकल्प आयो ये व्यवहार ने उसी को अपवाद कहा और उसी को अपरत संयम कहा। अस्थिरता थई ए निश्चय ने, विकल्प आयो ए अपरत यत ने रत हृदय का जैसा हो करना और उसको र लगाना अंदर। आ उपेक्षा आय ने निश्चय ने, विकल्प आयो ए शुभोपयोग आ शुद्धोपयोग आय ने वो निश्चय जो है वो शुद्धोपयोग। कहो समझाणु काय, विकल्प आय वो एक देश परित्याग आ सर्वदेश परित्याग आ एटले ये उत्सर्ग जिसको कहेंगे कहो एक देश परित्याग। वही एक देश परित्याग तो श्रावक कहवाय, महाव्रत ए अनुव्रत, महाव्रत ए अनुव्रत विकल्प छे ने बहु मार्ग। यानी जो अनुव्रत को जो एक देश कहते वो बात जुदी है और यहाँ जो सराग संयम कहो या छठे गुणस्थान वाले को शुभराग है तब एक देश कहते हैं, वो दोनों का मिलान नहीं करना यहाँ जो अपरत संयम को ही एक देश परित्याग कहा था। आखो मार्ग फिर भी नाख्यो, लोगों ने खबर पण न मळे के वितराग नो मार्ग शू छे, जेमा जन्म्या एनो धर्म छे। थई रही क्या कहा, हिंदू है तो उसको धर्म माना, श्वेतांबर में जन्मा तो वहाँ की मान्यताएं मान ली, या दिगंबर में जन्मा तो वहाँ भी कहाँ फुर्सत है उसको, कहाँ सच्चा क्या है समझने के लिए। दिगंबर में जन्म लेने के बाद भी ये व्रत तप करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो उसी को धर्म मान लिया, ये कह रहे थी रही हूं। जाओ एक कुड़मा गणे, यानी तो अपने कुल के जो आचार विचार है उसी को उसने धर्म मान लिया। 65 नंबर की गाथा। पासुग भूमि पदेशे गूठे रहिए परो परो हेण उच्चार दिच्चागो पैठा समिधि हवे तस्स। प्रासुक भूमि प्रदेशे गूढ़े रहिते परो परो धेन उच्चारादि त्याग प्रतिष्ठा समितिर्भवे तस्य। जे भूमि प्रासुक गूढ़ने उपरोध जा पर नो नहीं मर त्याग त्याग करनार ने समिति प्रतिष्ठापन तनी। परोपरोधेन रहिते जेने परना उपरोध विनाना इतले बीजा थी रोकवामां न आवे एवा, यानी किसी प्रदेश में कोई रोकता है कि नहीं यहाँ नहीं बैठना तो वहाँ ऑब्जेक्शन देते। गूढ़े एटले गूढ़ अने प्रासुक भूमि प्रदेश है, प्रासुक भूमि प्रदेश में, अभी भूमि को भी प्रासुक कहा, यानी उसमें कोई जीव जंतु ऐसे दिखने वाले तो नहीं है और वहाँ कोई हरियाली वगैरह नहीं है तो उसको क्या कहें, वो प्रासुक।
गुड़ का क्या अर्थ है,
गुड़ का गुड़ ही लिख दिया है उन्होंने, गुड़ प्रदेश में। अब देखते हैं नीचे उसको ही।
यहाँ जो लिखा है ना बीजा थी रोपा में न आवे एवा तो देने ऊपर न उपरोध विना न थे, ये अलग है और गुड़ आ गया है।
हाँ उच्चार आदि त्याग मणादि नो त्याग होए तस्य तेने प्रतिष्ठा समिति ही प्रतिष्ठापन समिति भवे तेटले होय छे। टीका। आ मुनियो ने काय मलादि त्यागना स्थाननी शुद्धिनो कथन छे। काय मले ने मलमूत्र जिसको हम कहते हैं उसको त्याग, वो जमीन बराबर देखकर वहां त्याग करते हैं। शुद्ध निश्चय थी जीव ने देहनो अभाव हुआ थी, अन्न ग्रहण रूप परिणति नथी। हमने देखा ना अनशन स्वभावी है, व्यवहार थी जीव ने देह छे तेथी तेने ज देह होता आहार ग्रहण छे, आहार ग्रहण ने लीधे मलमूत्रादिक संभवे छे ज। समझ में आई बात? हाँ, वो अनशन स्वभावी है तो जो अनशन है वो उसको मलमूत्र कहाँ से होगा, उसकी बात नहीं है यहाँ पर। जिस नए से देह है कह रहे उसके तो मलमूत्र भी होते है, तेथी ज संयमियों ने मलमूत्रादिकना उत्सर्गनु एटले त्यागनु स्थान जंतु रहित अने परना उपरोध रहित होय छे। ते स्थाने शरीर धर्म करीने पछी जे परम संयमी ते स्थान थी उत्तर दिशामां केटला पगला जईने उत्तर मुखे उभा रहीने काय कर्मोनो एटले शरीरनी क्रियाओनो संसारना कारणभूत होय एवा परिणामनो तथा संसारना निमित्तभूत मननो उत्सर्ग करीने निज आत्माने अव्यग्र एकाग्र थईने ध्यावे छे, अथवा फरी फरीने कलेवरनु एटले शरीरनु पण अशुचिपणु सर्व तरफथी भावे छे तेने खरेखर प्रतिष्ठापन समिति होय छे। बीजा स्वच्छंद वृत्ति वाला यति नामधारियोंने कोई समिति होती नथी। अब इसकी विशेष बात हम कल प्रवचन में पढ़ेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो पालो सो वाणी मस्तकनम सदा देत हो।
नमो अरिहंताणो नमो सिद्धाणो।